اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض صلوات دي محمد علي محمد آج اتفاق ایسا ہے کہ آخری مجلس سے مجھے اس کو جمع کرنا ہے اپنے مضمون کو نتیجہ بھی دینا ہے آپ لوگوں کو اور پروردگار عالم میری مدد کرے جب میں بیٹھتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے الحمدللہ میدان کا آدمی ہوں حجرے کا آدمی نہیں ہوں سمجھ میں آ گئی بات پوری زندگی گزر گئی ہے میدان میں کھڑے ہوئے سمجھئے جانتا ہوں کیسے جواب دینا ہے کس کو جواب دینا ہے کہاں جواب دیا ہے میرا سمجھئے اور خدا کا شکر ہے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اپنے ذہنوں سے غلط فہمیوں کو دور کر لینا میرا نام ہے حسن ظفر اور امام بارگاہوں مسجدوں میں جا کے کر سکتے ہو یا ہنگامے آ رہی ہیں خراب کیا ہے مجلسوں کو جھگڑے کرائے ہیں مجلس نہیں ہونے دی میرا نام ہے حسن ظفر گھر تک پہنچاؤں گا جھوٹوں کو سمجھ میں آ گئی بات میں لعنت بھیجوں گا قرآن کی زبان میں سب بے شمار کہنا لعنت اللہ علی الکاذبین بلند آواز سے سلوات بھیجیے ایک بار اور محمد آل محمد پر آئیے اب آپ کو کیونکہ مسئلہ ایسا کہ آپ سے تین دن سے میں نے اجازت لی ہوئی ہے دو تین شبہ زائل کرنے میں نے پہلی مجلس میں کیا عرض کیا تھا کہ شبہات کو زائل دو طرف میں نے جو کل روایت پیش کی آپ کی خدمت میں غلو کا شبہ ہو سکتا ہے مجھ پر الزام آ سکتا ہے میں الزام کیا شبہ پیدا ہونا سوال پیدا ہونا کیا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے یہاں تو سوال کرنے میں پابندی نہیں کہیں ہوگی پابندی ہمارے یہاں تو کوئی پابندی نہیں سوالات کرنے کے اوپر ایسے ہی ہے نا تو شبہ ہو سکتا ہے طلبہ ہیں یا علماء ہیں اور میں ہمیشہ ہی کہہ کے پڑھتا ہوں کہ علماء کے سامنے پڑھ رہا ہوں طلبہ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات ہے نا اب شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس قسم کی روایات آج انشاءاللہ خدا کی مدد سے جو شبہ ذہن میں پیدا ہوا ہے نا اس شبہات کو دور کر دوں وہ جو میں بار بار نور 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 کا ذکر کر رہا ہوں آج میں نے سرنامہ کلام ہی اس آیت کو اس کے ایک حصے پر ابھی پوری آیت کی تلاوت تو کریں گے بعد میں لیکن پہلے وہ پوری حدیث پڑھ لیں جس سے شبہ پیدا ہوا تھا غلو کا اچھا حدیث ہے مستند حدیث ہے جب وہ حدیث بیان کر دیں گے پھر دوسری حدیث پڑھیں گے اس کے بعد پھر آیات کے سائے میں جب بات کو لے کر چلیں گے پھر درایت کے سائے میں بات کو لے کر چلیں گے تو پھر نور کا جب مطلب واضح ہو جائے گا نا پھر انسان کے سامنے سے سارے شبہ زائل ہو جائیں گے تاکہ وہ جو غلو کا شبہ ہے نا اس کو ذرا ظاہر کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان جوش خطابت میں ایسا نہ ہو کہ غلو کی طرف چلا جائے تو یہ الحمدللہ یہ ناچیز طالب علم میں چھوٹا سا کبھی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ مولا کا فرمان من قال انا عالم فہو جاہل سمجھ میں آ گئی بات مولا نے پہچان بتائی جاہل کی عالم کی نہیں جو اپنی زبان سے اپنے آپ کو عالم اور علامہ کہتا نظر آ جائے سب سے بڑا جاہل من قال انا عالم فہو جاہل وہی جاہل اب آپ کے نعرہ میں نے روک دیا تھا اب آپ تینوں نعرے لگائیے غلام حسین صاحب آپ مریض ہیں آپ کا نعرہ میں نے روکا تھا نعرے لگائیے تینوں بسم اللہ اللہ تمام مومن کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے سلوات کی رائے فرمائیے پہلے وہ پوری روایت پڑھ تسلی سے انشاءاللہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے نا آج کے بعد کبھی اہل بیت کے انوار مقدسہ کے بارے میں کبھی شبہ کا شکار ठीक है ना, पहले वो रिवायत पूरी पढ़ दे लफ्ज ब लफ्ज जिसका कल इशारा किया जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, और हवाले में दे चुका उसने बाकी सब हवाले अलकतरा अलकतरा तो मिन फजाइल अलबैत यही पर किताब है, उसमें फिर ये सारे हवाले। मैं तीन किताबें सिर्फ अपने साथ लाया हूँ, बाकी यहाँ किताब खाने में कराची से जो लेके चला हूँ तीन। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अशराफ बुजुर्गान, अब देखिए लफ्ज ब लफ्ज क्योंकि देखिए अरबी भी लिख के लाता ना तो बहुत वक्त चाहिए, और पहले मैंने ऐसा कर दिया मैं हाफिज थोड़ी हूं, और कागज देख के पढ़ना गलत पढ़ने से बेहतर है, समझ में आ गई बात, कागज देख के पढ़ना गलत पढ़ने से बेहतर है। अशराफ बुजुर्गान अरब से एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, जबकि हम और आप एक ही आब गिल से पैदा हुए, सिर्फ आपका लफ्ज है, मैंने गिल महावरत बढ़ा दिया यानी एक ही हमीर से हम सब बने, एक ही आप से खल्क हुए, तो फिर किस सबब से आपको हम पर बरतरी है। ये कल मैंने जुमले अदा किए थे ना तफसील से, मैंने कहा था तफसील है हदीस की, वो तफसील आ रही है सर, आपने फरमाया हुजूर ने फरमाया ए बिरादरे अरब, सवाल करना तुम्हारा हक है, सवाल करना, लेकिन एहतराम महफिल, एहतराम मजलिस, जगह का तकद्दुस, हर चीज का अपना एक तकद्दुस और मकाम आता है। ए बिरादर बैठ, तुझे मैं जवाब देता, ए बिरादर अब उस वक्त जब अल्लाह ने तय किया कि हमें खल्क करे, जब अल्लाह ने तय किया कि हमें खल्क करे, तो कलिमा अदा किया, एक कलिमा अदा किया जिससे नूर पैदा हुआ, एक कलिमा अदा किया जिससे नूर पैदा हुआ। ये बता रहा हूं कि ये वो रिवायत है जिससे गुलू का शुबा पैदा होता है, अभी शुबा दूर करना मेरा काम, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हदीस आखिरी सनद है, नहीं, मैं इसके बाद इससे जो शुबा पैदा हो रहा है उसको दूर करना मेरा काम, ठीक है ना। सुनिए, फरमाते हैं कलमा अदा किया जिससे नूर पैदा हुआ, दूसरा कलमा अदा किया जो रूह करार पाया, दूसरा कलमा अदा किया जो, ये बड़ी बड़ी दलीलें मिलेंगी आज आपको, कौन सा रूह था, कौन सा नूर था जो मलाइका कहते थे कि हम हकदार हैं खिलाफत के, इंसान को क्यों देगा, इनको क्यों देगा, जब अभी खल्क नहीं किया था तो मलाइका को कैसे मालूम था, इसका मतलब कुछ था जो मलाइका को मालूम था। अभी सुनिए, सुनिए आप, अभी आप खुद ब खुद आप दिल से नारे लगाएंगे, अभी सुनिए आप, जिससे नूर पैदा हुआ, दूसरा कलमा अदा किया जो रूह करार पाया, पस मैं अली फातिमा हसन हुसैन को उसी नूर से पैदा किया। अभी कुछ नहीं है कायनात में, कुछ नहीं है आलमीन में, पहले कलमा अदा किया नूर पैदा हुआ, दूसरा कलमा अदा किया रूह पैदा हुआ, अल्लाह ने उस नूर से मुझे अली फातिमा हसन हुसैन को खल्क किया, फिर मेरे नूर से अर्श इलाही को खल्क किया, मेरे नूर से अर्श इलाही को किसके नूर से खल्क किया, मेरे अल्लाह के रसूल के, कहा बस अब मेरे नूर से अर्श इलाही को खल्क किया, इसलिए मैं अर्श से बरतर हूं, इसलिए कहा ना कि बाद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद रसूल है, आलमीन का रसूल है, शुबे में ना पड़ना, आलमीन इल्लत है, रसूल मालूल है, माजरत, आलमीन मालूल है रसूल, वमा सल्ला के इल्ला रहमतन लिल, रहमत इल्लत है, आलमीन मालूल है, इल्लत पहले होती है, मालूल बाद में होते हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि मैं अर्श से बरतर हूं क्योंकि अर्श बाद में खल्क हुआ, मेरे नूर से खल्क हुआ है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, मेरे नूर से, आगे बढ़िए, मेरे नूर से अर्श इलाही को खल्क किया, इसलिए मैं अर्श से बरतर, और नूर अली से आसमानों को पैदा किया, नूर अली से आसमानों को पैदा किया, बस अली आसमानों से बरतर, अल्लाह के बाद रसूल है, रसूल के बाद, यही तरतीब बता रहा हूं ना, जिसने इस तरतीब को बिगाड़ने की कोशिश की उसकी दुनिया और आखिरत तबाह हो जाए, समझ गए, यही तरतीब, यही है, इस तरतीब को मत बिगाड़ना, अल्लाह है, रसूल है, फिर अली, सब कुछ है अली, मगर पैगंबर खत्मी मर्तबत के बाद, साफ बता रहा हूं, सलावत भेजिए, कोई मैंने तकिया तो नहीं किया, मैंने कोई आपको बता रहे कोई डर खौफ तो नहीं हुआ ना मुझे। याद रखना सब कुछ है अली मगर मोहम्मद अरबी के बाद। अब आइए आगे, नूर अली से आसमानों को पैदा किया, बस अली आसमानों से बढ़कर नूर हसन और हुसैन से शम्स और कमर को पैदा किया। नूर हसन और हुसैन से यानी जितने सूरज चांद सितारे नूर से खल्क किए, बस हसनैन शम्स और कमर से अफजल। बात खत्म नहीं हुई अभी, बात आगे चली। और फिर अल्लाह ने तारीकी को जमीन पर मुसल्लत कर दिया। दो रिवायतें तसलसल के साथ इसके बाद जो पेश करूंगा, मसला करीब आएगा और फिर आयत पेश कर देंगे आपके सामने। और फिर अल्लाह ने तारीकी को जमीन पर मुसल्लत किया इस तरह कि मलाइका इस तारीकी के मुतहम्मिल ना हो सके, मलाइका इस तारीकी को तहम्मुल न कर सके। और मलाइका ने अल्लाह से इस तारीकी का शिकवा किया, मलाइका ने अल्लाह से इस तारीकी कहा शिकवा किया। अल्लाह ने जिब्राइल से फरमाया नूरे फातिमा से कुछ नूर लो। जब आयत पेश करूंगा मसला हल होगा इंशाल्लाह। देखिए कहां पहुंचाते हैं मतलब को आपके लिए आज। अल्लाह ने जिब्राइल से फरमाया नूरे फातिमा से कुछ नूर लो और उसे कंदील में करार दो। कहां करार दो? ये लफ्ज कंदील याद रखना, इस नूर को एक कंदील में करार दो और इस कंदील को गोशवारा अर्श पर आवेजा कर दो। जिब्राइल ने फरमान इलाही को अंजाम दिया, बस उसी वक्त ये सातों आसमान और जमीन मुनव्वर हो गए। सातों आसमान और जमीन मुनव्वर हो गए मलाइका से। मलाइका ने तस्बीह और तकदीस इलाही शुरू कर दी, मलाइका ने तस्बीह और तकदीस इलाही शुरू कर दी। बस खुदावंद मुताल ने फरमाया व इज्जती व जलाली, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम। फरमाती परवरदिगार ने फरमाया इज्जती व जलाली व जूदी व मजदी व इर्तिफाए मकान इलाज अलन्ना सवाब तस्बीह कुम व तकदीस कुम ले फातिमता व बालेहा व बनीहा व मुहिब्बीहा इला यौमिल कयामत फमिन अजले जालिक सुम्मियत ज़हरा। एक सलावत भेजी मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सुनिए ऐसे ऐसे हदीस किस्सा में जुमले नहीं आए, किसी इंसान की गड़ी हुई नहीं है हदीस किस्सा। अगर इंसान की गड़ी हुई होती तो बार बार कहता हूं तारुफ फातिमा से न कराता, तारुफ मोहम्मद अरबी से कराता। कितनी जगह से गवाहियां दूं कि फातिमा क्या है। अब यहां क्या फरमा रहा है, अब तर्जुमा कर दूं बुलाए बच्चों को, बड़े तो समझ गए बच्चों की समझ में नहीं आया। सुनिए क्या फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और जलाल बख्शिश और बुजुर्गवारी मकाम रिफ़त वाला की कसम। यानी जब मलाइका ने तस्बीह तकदीस शुरू की तो परवरदिगार कसम खा रहा है। कैसी कसम खा रहा है, मुझे अपने इज्जत और जलाल बख्शिश और बुजुर्गवारी मकाम रिफ़त वाला की कसम, जरूर भी जरूर तुम्हारी इस तस्बीह तकदीस का सवाब रोजे कयामत तक फातिमा उसके शौहर उसके बच्चों और उसके चाहने वालों के लिए करार देता हूं। है ना, ये पूरी रिवायत पढ़ दी मैंने, शुबा पैदा हुआ। क्या शुबा पैदा हुआ? गुलू का। है ना, हमारे यहां माशाल्लाह बड़े बड़े बुकरात बैठे, सुकरात बैठे, समझे। किर में किताबी बनते हो, किताबों के कीड़े बनते हो, इश्क अहले बैत किताब में नहीं मिलेगा, जाओ खुमैनी की जात में डूबो। खुमैनी के नाम को बेचना और है, उसके इश्क में डूबना और है। समझ में आ गई बात? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी ना फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए सुना, समझ में आ गई बात? शुबा पैदा हुआ, गुलू का शुबा पैदा हुआ। आगे बढ़िए, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की रिवायत। पांचवा इमाम साहब का मासूम कल इशारा किया था ना, मैंने कहा था आज तफसील दूंगा, सुनिए, इन्नमा सम्माहा फातिमत ज़हरा लियन्नल्लाहा अज़्ज़वजल खलकहा मिन नूर अज़मतिही। मैं चाहता था कि एक लफ्ज भी इधर उधर ना हो जाए, बड़े बड़े पकड़ने वाले बैठे हैं। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, नाम में कोई शक है? ये वो हदीस है, एक जगह नहीं है, न जाने कितनी जगह नकल की गई, इसके तो मैं हवाले क्या दूं आपको, यहां जितने उलमा बैठे सब जानते हैं जो हदीस में पढ़ रहा हूं। पूछा था जनाब जाबिर ने, सवाल किया था जब मुलाकात हुई थी ना, ज़ईफ हो गए थे बहुत, जानते ना सात इमामों के हदीस, जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी तो मुलाकात ही बहुत ज़ईफ है, तो हर एक से फजीलत जरूर लेते थे, वो लोग थे जो फजीलतें ढूंढते थे, हमारे यहाँ इस चक्कर में कि फजीलतें कम करो, अजीब है अजब दिमाग है लोगों का कि कोई जद्द ताहिरा के बारे में। अच्छा ये बताइए फातिमा नाम क्यों रखा अल्लाह ने, अल्लाह ने फातिमा नाम क्यों रखा? अब मासूम फरमाते हैं इन्नमा सम्माहा फातिमत ज़हरा लियन्नल्लाह अज़्ज़ वजल खलकहा मिन नूर अज़मतिही। हमारी जद्द ताहिरा का नाम फातिमा जहरा इसलिए रखा गया कि अल्लाह ने इसकी खिलकत अपनी अजमत के नूर से की, अपनी अजमत के नूर से खल्क किया है फातिमा जहरा को। जब ये नूर खल्क हुआ, वो जो मैंने बताया मलाइका की आंखें खीरा हो गई, अब देखिए वो अलग हदीस है, ये अलग हदीस, मलाइका की आंखें खीरा हो गई, सवाल किया माबूद ये नूर कैसा, ये रोशनी कैसी जिससे हमारी आंखें खीरा हुई, अब जवाब मिला हाज़ा नूरुम मिन नूरी अस्कनतुहु फी समाई व खलक़तुहु मिन अज़मती। ये नूर मेरे नूर में से है, ये नूर हाज़ा नूरुम मिन नूरी वास्कन तो हो भी समाई, और मैंने इस नूर का मस्कन करार दिया है अपने आसमानों में। मैंने इस नूर को मस्कन कहां करार दिया है? इस नूर को मस्कन करार दिया आसमानों में। वह खलक तो हूं मेरी अजमती, और मैंने इस नूर को अपनी अजमत से खल्क किया है। किससे खल्क किया है? अजमत से। उखरे जो हूं मिन सुल्बे नबी मिन अंबियाई वापस जल हूं अला जमील अंबिया, इस नूर को जाहिर करूंगा एक नबी के सुल्ब से, और उस नबी को तमाम अंबिया पर फजीलत दे दूंगा। अभी हदीस से सुना रहा हूं, अभी इसके बाद चलिएगा, बेटा पानी दो। एक बार और मिलकर बुलंद आवाज से सलवाती नायक फरमाइएगा वापस चले हुआ जमील अंबिया, तमाम अंबिया पर उस नबी को, किसको? जिसके सुल्ब में नूरे फातिमा, जिसके सुल्ब में नूरे फातिमा करार दूंगा उसको। आगे बोखरे जो, अब अपनी फजीलत भी सुनते जाओ शियो, तुम्हें बहुत डिग्रेड करते हैं लोग, याद रखो एक हदीस तुम्हें सुना रहा हूं, हदीस का पूरा वाक्य इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है क्लासिफाइड करना, तबका बंदी करना मसाइल को, इतना आसान नहीं होता मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ना। सुनो, अपने किसी शागिर्द को, साथी को भेजा, यानी नासिर को भेजा, साहबी को भेजा, जो भी कह लीजिए, गरीबों की बस्ती थी एक मोमिन की शिव की, अनाज दे के जाओ बांट कर आ जाओ, चला गया बांट कर आ गया, दो दिन बाद आया, मूड सही नहीं था, मूड इमाम ने देखा कैफियत कुछ, कभी हाँ काम करा है, कहा हाँ काम, कहता खुश नहीं आया लगता है, बिल्कुल भी खुश नहीं आया। वो कहता है मासूम से, मैं बिल्कुल भी मौला, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं है, काश में ना गया होता, काश में बैठा है, क्या हुआ भाई क्यों नाराज हो, क्या गया क्या मौला, वो उन्हें मारिफत ही नहीं आप, अल्लाह हिदायत दे, कहता है क्यों नहीं आपकी आपकी मारिफत, वो जानती नहीं आपके मकाम को, नहीं उन्हें तौहीद का नहीं पता। हाँ इमाम मुस्कुरा, अच्छा अच्छा ये मसला है, तो तू बड़ा काबिल है, बाकी सब जाहिल है, समझ आ रही बात, खुदा किसी को इस गुरूर में तकब्बुर में मुब्तिला ना, तबाही 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 तबाही। अच्छा अच्छा बैठ बैठ, ऐसा मसला है ना। अच्छा तू इसलिए नाराज हो क्या है कि जो तू जानता है वो नहीं जानता जी, जो तेरी मारिफत है मेरे बारे में वो उनकी गरीबों की नहीं है बेचारा, उनकी मारिफत नहीं है, तेरी मारिफत बहुत है। हाँ अच्छा ये बता, जो मैं जानता हूं तू जानता है? तो फिर मैं भी तुझे भगा दूं है? फिर किसी को हक नहीं यहां बैठने का, जो मेरे लेवल का वो बैठे, बाकी सारे बाहर जाओ। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। क्या फिर जो मैं जानता हूं तू जानता है क्या? नहीं नहीं मौला, मैं तो कल फिर मैं तुम सबको फारिग कर दूं, क्योंकि तुम्हें वो मालूम ही नहीं जो मुझे मालूम। और जो अल्लाह जानता है और जो अल्लाह का रसूल जानता है, इत्मीनान से आराम से आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो। याद रखो, अब सुनिए, ये तकरार बेशक हो रही है लेकिन मौके की मुनासिबत से है ना। पर भाई देखो, ईमान की मंजिलें सीढ़ी की मानिंद है। ईमान किसकी मानिंद है? सीढ़ी की मानिंद है। सात जीने बताए इमाम ने, कितने बताए? अच्छा सात की वजह भी बताऊंगा कि सात क्यों बताए। सात कोई ईमान के पहले सीढ़ी पर बैठा है, दूसरी वाली का क्या काम है? इसका हाथ पकड़ के ऊपर नहीं आता, बैठा रहने दो, धक्का क्यों दे रहा है? किसने हक दिया है तुझे कि दूसरे को ईमान से बाहर कर दे? तो पहले पर बैठा है ना, बैठा रहने दे। जो दूसरे पर बैठा है, तीसरे दर्जे वाले का काम क्या है? मेहनत करे इसको लेकर। नहीं आता, धक्का नहीं दो, बैठा रहने दो। बैठा है ना, दूसरे दर्जे पे है ना, बैठा है ना। चौथा दर्जा, पांचवा दर्जा, सातवां दर्जा का काम क्या है इसका? इसको लेकर नहीं आते, बैठा रहने दो। हुजूर के साहबा हो, मौला के साहबी हो, मौला के चाहने वाले कितने कैटेगरी के लोग होते थे? क्या सब अबू दर्द थे? क्या सब सलमान थे? क्या सब मिजदाद थे? क्या सब अम्मार यासिर थे? सब हम्बर थे? सब हबीब इब्न मजाहिर थे? मालूम ने फरमाया कि आखिरी मंजिल है वो सातवां दर्जा, उसका काम क्या है? सबका ख्याल करता है। जानता है भाई, हर आदमी एक सतह का थोड़ी होता है। बात वो करो, गुफ्तगू वो करो जो नीचे वाले की समझ में आ जाए और ऊपर वाले की भी। ऐसे है ना, ये कार्य रिसालत को इतना आसान है, कार्य रिसालत कितना मुश्किल है। इसके लिए कितना हौसला चाहिए, इसके लिए कितना बड़ा जिगर चाहिए है? इसके लिए कुव्वत बर्दाश्त कितनी चाहिए? चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं चलता। साथ क्यों मौला, साथ क्यों? कितना ही आगे बढ़ जाए, सातवीं मंजिल से आगे नहीं जा सकता। आखिरी मंजिल क्या बताई? क्यों? कलाम मासूम है, मजाक नहीं है। मासूम ने दर्जे बचाए बचाए क्यों? अल्लाह का रसूल पहले बयान कर चुका कि ईमान के आठवें दर्जे पर है मिकदार, कोई मिकदार तक नहीं पहुंच सकता। क्या मतलब हुआ? यानी जिस दर्जे पे मिकदार है, बाकी सब उससे नीचे। नवे पे कौन है? अबू जर गफ्फारी। यानी जहां अबू जर गफ्फारी है वहां मिकदार भी नहीं है। दसवे पे है सलमान, जहां सलमान है वहां अबू जर भी नहीं है। वहां अबू जर भी नहीं है। सलवार मेरी मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए, उपासना वाला थे भी लंबी आवाज़ जो मिंसारे के उखरे जो मिंसारे का नूर है उम्मत। इस नूर से जाहिर करूंगा एक उम्मत को, ये आपके लिए। मुझे बताओ, ये जो मकाम आते मुकद्दसा के लिए लड़ते रहे, चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह साल के बच्चे कितने पढ़े हुए थे? ये कितनी किताबें पढ़ ली थी इन्होंने? कितने होंगे इमाम में पढ़ लिए थे वो? ये अल्लाह जिसको इरफान की मंजिलें देता है ना, रातों रात सफर तय कर। खुदा की कसम, हमने अवाइल इनकलाब में रातों रात ये सफर तय करते देखा लोगों को। क्या आज कुछ थे, कल कुछ हो गए, लेकिन नर्म मिजाज। कैसे मिजाज? मुनकसिर मिजाज। रहबरों की सिफात हुमैनी बताकर गया कि जितना बड़ा रहबर होगा उतना ही सर झुका हुआ होगा। कैसे कैसे लोग थे उसकी मिल्लत में, लेकिन जब मिल्लत को खिताब करता था तो हमेशा कहता था मिल्लत शहीद परवर। हालांकि कितने मुनाफिकीन थे, कितने मुनाफिकीन थे, गद्दार थे, धोखेबाज थे, लेकिन मिल्लत की हैसियत से खिताब करता ताकि सबका हौसला मिल्लत शहीद परवर, मिल्लत हिजबुल्ला, ताकि जो बेअमल भी है ना उसको भी एक जोश पैदा होता था कि मैं इतना निचला इंसान और ये शख्स मुझे इतना बड़ा बना रहा है। समझ में? रहबर को देखो, रहबर की इनकी सारी देखो, रहबर के चेहरे पे शफकत देखो, रहबर के चेहरे पे रहमत देखो, अल्लाह की रहमत बरस रही है। समझ में आ रही है बात? नरमी देखो, गुफ्तार देखो, ना मालूम क्या क्या चीजें देखना पड़ती है। सुनो, उफज़िलु अला जमील अंबिया व अख़रुजु मिन ज़ालिका नूर, इस नूर से जाहिर करूंगा उम्मतन, एक उम्मत को, एक कौम को, एक गिरोह को, यकूमून बे अमरी, जो मेरे अमर के लिए कयाम करे। सिफत क्या हुई इस कौम की, सिफत क्या होगी? और ये कितनी बड़ी, ये कितनी बड़ी सिफत है कि वो किसके नूर से जाहिर होगी? नूरे फातिमा से उसकी खिलकत होगी। उसकी पहचान क्या होगी? मेरे अम्र के लिए लड़ेगी, हर जमाने में लड़ेगी। तो आदमी जो बेचारा मामूली सिपाही ना समझना, अगर हल्दुश शादी में या ज़ैनबी उनमें लड़ रहा है तो कोई मामूली नहीं है। वो अल्लाह जानता है कि इसका मर्तबा कितना बुलंद है। कहा बेचारे इतने पढ़े लिखे लोग, इतने काबिल, कहा जैसे हमारे यहाँ मौजूद हो गए माशाल्लाह से, वहां कहा इतने काबिल वो लोग, लेकिन नहीं जानते कि ये मेरे अम्र के लिए कयाम करेंगे। भैया दूना इलैया खल्की, लोगों को मेरी तरफ बुलाएंगे, गुमराह नहीं करेंगे। यही से तो मुझे गुरेज करना है जो बताना चाह रहा हूँ, जो शुबा दूर करना है। इनकी एक सिफत क्या होगी? यहदूना इलैया खल्की, मेरी मखलूक को मेरी तरफ बुलाएंगे, मेरी तरफ दावत देंगे। बज खुलफा फी अर्जी, और बस मैं इन्हीं को रूए जमीन पे अपना वारिस बना दू, रूए जमीन पर अपना वारिस बना दूंगा। ऐसे है? अब आइए, ये वो दो रिवायतें, दो तीन के जिन्हें बाद हमारे अहले इल्म ने शुभा जाहिर किया कि इससे गुलू है ना। मैं बहुत डरता हूं, नहीं अभी कहने बात नहीं कि सवाल है, माकूल बात है कभी गुलू का शायबा, इस गुलू के शायबे को दूर करते, इस गुलू के शायबे को दूर कर। अल्लाह नूर समावात वल अर्श, मसल नूर ही कमिश्कात फीहा मिसबाह, अल मिसबाह फी ज़ुजाजत, अज़ ज़ुजाजत कान्नह कौकब दुर्री यूकदु मिन शजरत मुबारकत ज़ैतूनत ला शर्क़ियत वला ग़र्बिया यकाद ज़ैतुहा युज़ी वलौ लम तंसस्हु नारुन नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सवाल का जवाब इस पहली आयत में नहीं है। पहली आयत की जरा सी तशरीह कर दूं, सवाल का जवाब है इसके बाद वाली आयत है ना। अभी तो फिर कहेंगे जाइए तो आपने अपनी तरफ से तावील करी, तौजी कर ली। मैं अपनी तरफ से तावील तौजी नहीं करूंगा, इत्मीनान रखो, बेफिक्र रहो। अल्लाह नूर समावात है, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। मसल नूर ही, अल्लाह अपने नूर की मिसाल दे रहे। अजीब है, कहां खालिक कायनात, यानी ये बात अजीब है, बात अजीब है। कहां पूरे आलमीन का मालिक, खालिक, खल करने वाला, और मिसाल कैसे दे रहा है? मसल नूर ही कमिश्कात, उसके नूर की मिसाल तो एक ताक की है। ताक तो समझते हैं ना, पुराने जमाने में दीवारों के दरमियान में दिए जलाए जाते थे, बना दिया जाता था पुरानी हवेलियों में। भी पुराने शहर में जाएंगे, दूसरे शहर में तो ताक नजर आ जाएंगे आपको, ताक से और ताक ये सब। ताक से छोटा होता है, ताक जरा बड़ा होता है। कमिश्कात, अल्लाह के नूर की मिसाल अल्लाह दे रहा है। नूर के, मेरे नूर की मिसाल क्या है? एक ताक की मान। मसल नूर ही कमिश्कात फीहा मिसबाह, उस ताक में एक चराग रखा है, उस ताक में एक चराग रखा। अल मिसबाह फी ज़ुजाजतिन, और वो चराग एक कंदील में। वो चराग कहां है? मैंने कहा ना, अभी आधा जवाब है इस आयत में। अभी भी लोग कहेंगे कि नहीं ये तो आपने तफसीर भी राय कर दी। नहीं, तफसीर भी राय करने का मुझे हक भी नहीं है भाई। मैं इतना बड़ा मुफसिर कुरान हुई नहीं, छोटे ही नहीं हूं, बड़ा कहां से आया। मैं तो वही सारी बयान करूंगा जो तफसीर नूरुस्सकलैन से लेके और तफसीर अल मीज़ान तक सब आया है ना, जो मैंने पढ़ा जितना सारी। ये भी दावा नहीं कर रहा कि सारी तफसीरें मैंने पढ़ ली भाई, जो मेरे इख्तियार में, मैंने तो वही पढ़ी है। लेकिन मिसदाक, मिसदाक बताने का हक रखता हूं। इतना जरूर मैंने अलिफ बे पढ़ी है कि मिसदाक तलाश करके आपको दे दूं कि मिसदाक कौन है। ठीक है, अल मिसबाह फी ज़ुजाजतिन, ये चराग एक कंदील में है, और वो कंदील कैसी है? ज़ुजाजतु कान्हा कौकबुन दुर्रियुन, ये जो कंदील है एक रोशन चमकदार सितारे की मानिंद। ये कंदील कैसी है? रोशन और चमकदार। कोकबन दुरियन यू कदम इन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन ला शरकियतिन वला गर्बिया। और ये कैसे रोशन होता है? वो बरकत वाला पेड़ जो है जैतून, वो बाबरकत पेड़ जैतून, उसके तेल से इसको रोशन किया जाता है। यका तो जैतूहा युजियो बलो लम तमसक हुनार। और करीब है कि आग इसको छुए भी नहीं और ये रोशन हो जाए। यानी ये चराग जो रखा है ये अपनी रोशनी में अपने नूर में इतना तेज है कि जरूरी नहीं कि आग करीब जाए इसके। बलोलम तमसा सनारोन नूर उदला नूर। और ये तो नूर बालाए नूर है, यानी एक तो वैसे ही नूर और फिर रोशन करने के लिए भी नार की जरूरत नहीं पड़ी। तो नूर उदला नूर, बस ये तो खुद ब खुद रोशन होने पे तैयार बैठा है, खुद ही रोशन हो जाएगा। लेकिन याद इल्लाह नूर ही मंजशा, हर कोई इस नूर तक पहुंच जाएगा? नहीं। यादिल्लाह ले नूर ही मैं यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत कर देता है। अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ, यादिल्लाह ले नूर ही मैं यशा, हिदायत कर देता है उसके नूर की तरफ। अल्लाह बिकुल्ले शैइन अलीम, अल्लाह हर शय का इल्म रखने वाला है। ये क्या बात हुई मौलाना? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं सारा दलील के साथ जवाब दे दूंगा, ये क्या दलील हुई? ये तो आपने आयत को अपनी मर्जी पे ढाल दिया, माशाल्लाह, है ना? कह सकते हैं ना लोग, हाँ यही तो लाना चाह रहा था। इसके बाद वाली आयत देखो ना, जब कुरान खुद बता दे कि ये नूर कहाँ है, फिर कोई शुबा रहता है? उलमा मेरा साथ देंगे जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन उलमा के कानों में, मेरा साथ दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। सूरह नूर की ये थी 35वीं आयत, अब आइए 36वीं आयत। तसलसल है, बीच में कोई मैं गैप नहीं ला रहा हूं। तसलसल ये नहीं कि एक लफ्ज मैंने यहां से लिया, एक लफ्ज वहां से लिया, अपना मतलब पेश कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं। 35वीं और 36वीं आज नंबर तो लिखकर आया हूं, मेरा ख्याल है नंबर भी मुझे याद है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ भाई, एक लफ्ज आज मसला है सर, आज मसला ऐसा कि बिल्कुल जनाब 35वीं और 36वीं। 36वीं आयत क्या है? फी बुयूतिन, पहली आयत अल्लाह नूरु समावाती, है ना? मिसाल दी ये है, ये है, ये है, ये है, कंदील में है। ये है कहां नूर? ये नूर कहां है? कुरान ही ने तो जवाब दिया, फी बुयूतिन अज़न अल्लाह अन तुरफा व युज़करा यसब्बहु फीहा इस्मुहु बिलगुदुव्वि वल आसार। ये नूर उन घरों में है, अल्लाह नूरु समावात वल अर्ज। ये नूर कहां है? बिल्कुल मुस्तकिल आयत उसके साथ, फी बुयूतिन अज़न अल्लाह, कि अल्लाह ने हुक्म दिया है इन घरों की रिफत को बयान करने का। इन घरों की या अल्लाह का जिक्र, उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। वह सब फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह की जाती है। उन घरों में है ये अल्लाह का नूर। तो अल्लाह खुद ही तो फरमा रहा है कि कुछ घर हैं जिन घरों में मेरा नूर है। अभी घर जाके बार बार तकरार कर रहा हूँ, घर जाके देख लीजिएगा दोनों आयतें साथ साथ। तर्जुमे वाले कुरान हर मोमिन के घर में होगा, है कि नहीं है? सबके पास होगा इंशाल्लाह। और तर्जुमे वाले इनको लेके रखो, इसलिए ताकीद करता हूँ। तो शुबा जाहिर हो गया कि क्या मुराद है यहाँ पे, इन घरों में नूर। कैसा नूर? अब देखिए मेराज ने सारे मसले हल कर दिए, हल कर दिए ना। अर्श इलाही से बाला कुछ नहीं है, तमाम मखलूकात हैं अर्श के नीचे, है ना? आसमान हो, जमीन हो, आलमीन हो, जो भी हो, अर्श इलाही के, अर्श इलाही का ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तय है कि जो कुछ भी है कायनात में आलमीन में वो अर्श इलाही से, ऐसे ही है ना? अर्श इलाही के नीचे हदीस में क्या था, पढ़ा था कि मेरे नूर से अर्श खल्क हुआ है, तो मैं नूर से, मैं अर्श से बढ़तर हूं, अफजल हूं, ऐसे ही है ना? अब आ जाइए, अब इस रिवायत में किसको इख्तिलाफ है? रिवायत क्या? वो सूरह इसरा, सूरह बनी इसराइल, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही نیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی. شب معراج عرش کی آخری حد پہ رک گئے تھے جبرائیل, رکے تھے کہ نہیں رکے تھے؟ رک گئے تھے نا, کہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھا پرے پرواز چل جائیں گے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے نور محمدی کی, کہ جہاں تمام انوار مقدسہ ملائکہ نور ہے, جہاں ان انوار کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے نور محمدی کی حد شروع ہوتی ہے.
یا رسول اللہ,
سمجھ آ گیا بھائیوں کی بات کہ نور فاطمہ کیا ہے؟ معراج نے سارے شبہات کو دور کر دیا. پہلے یہ تو دیکھ لو کہ معراج کہاں ہوئی ہے. ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے نہیں بیٹھا تھا موضوع لے کے میں پہلے دن, گمراہ کرنے نہیں آیا آپ کو, نہ کبھی کرتا ہوں, جانتے ہو آپ. شبہ زائل ہو گیا, لیکن شبہ میں نے اسی لیے زائل کر دیا کہ یہ یاد رکھنا, یہ ہستیاں وہ ہیں بس وہ جانتا ہے اور یہ اسے جانتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ زیادہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے عرض کر دیا نا کہ کتابیں وسیلہ ہیں, منزل نہیں ہے. کتابیں کیا ہیں؟ ورنہ یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے ہی پتہ نہیں کون کون پیدا ہوئے جو مقابلے پر آئے, معصومین کے جو مقابلے پر آئے, کہ سارے ان پڑھ سمجھے گا. قتل حسین کا فتویٰ دینے والے کون تھے؟ ایسے ہی تھے نا, دماغی طور پر اتنا پکا کر کے. ایک ہوتا ہے لڑنا, ایک ہوتا ہے مارنا, جنگ میں ختم کر دینا, لیکن ذہنی طور پہ اتنا برین واش کر دینا کہ کیا کیا انہوں نے آلے رسول کے ساتھ اور آج تک کیا کر رہے. یہ ہوتا نہیں جب کسی کے دماغ کو بالکل محبوس کر دے, قید مقید, تو کیا ہوگا؟ وہ انتہا پسند, وہ شدت پسند کی صورت میں آئے گا اور حسین کے خیموں کو لوٹ کر سمجھے گا کہ میں نے بہت بڑی دین کی خدمت انجام. آل رسول کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر سمجھے گا کہ میں نے بہت بڑا یہ کر رہے تھے نا. لوگوں نے نظریں مانی ہوئی تھی عاشور کے دن, عاشور کے دن, اسی لیے روزہ نہیں رکھتا نا کوئی شیعہ. نظر مانی ہوئی تھی کہ یہ ہو جائے پھر روزہ کھولیں گے, افطار کریں گے حسین کو قتل کرنے کے بعد. کل بھی ایسے ہی لوگوں کو علی کے مقابلے پر لایا گیا. کون تھے خوارج؟ پڑھ لو جا کے خوارج کی تاریخ. جو معاذ اللہ معاذ اللہ علی کو, علی پر کفر کا فتویٰ لگاتے, علی کو نصیحتیں کرتے تھے آگے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور پھر وہی کبھی کربلا میں یزیدی ٹولے کی صورت میں, کبھی یہ آج کے دہشت گردوں کی صورت میں. دیکھے ان کی آخری اسٹیج داعش, لیکن جتنے تمہیں ملیں گے وہ یہی ملیں گے جن کو اتنا پکا کر دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہی حق ہے. شیعوں کو مارا جائے, شیعوں کو قتل کیا جائے, لوٹا جائے, روزوں کو تباہ کر دیا جائے. دیکھنا آپ کے سامنے ہمارے دوست خورشید احمد فیضی نام ہے شاید, اگر میں نہیں بھول رہا, اہل سنت کے برادر ہیں. ان کا مدرسہ تھا, مصائب کے لیے ربط دینا چاہ رہا ہوں دو باتوں سے. ان کا مدرسہ تھا مدرسے متضرر, تو خوبی بیچارے روپوش, ان کا مدرسہ بھی ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. انہوں نے امام نسائی کی کتاب, کس کی کتاب؟ ان کے نیسے, ان کے امام محدث, ان کے بہت بڑے ہیں, چھ سات میں ان کا چھ میں شمار ہوتا ہے امام نسائی کا. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی خصائص علویہ یا حیدریہ, یعنی مولائے کائنات کے فضائل پر روایات لکھی. تو انہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا, हर शहर से निकाल दिए जाते थे। वो हैरत से कहते थे जब उनको लोमा टोकते थे कि भाई ये क्या तुमने लिखा, तो कहते थे भाई मैंने अपने पास से थोड़ी लिखा है, ये सब हमारी किताबों से लिखा है, इसमें से एक भी हदीस शियों की नहीं है, कभी शक ना हो। तुमने लिखी क्यों? फजाइल अली के बाद में तुमने मार दिए, बहुत बुरा सलूक किया गया इमाम नसाई के साथ। आज हजार साल के बाद खुर्शीद अहमद फैजी साहब ने उस किताब का उर्दू तर्जमा करने का गुनाह कर दिया, उसी किताब का, इमाम नसाई की किताब का, अपने किताब खाने से निकाल के किताब तर्जमा छोड़। अब वो तर्जमे का आना था कि कयामत हो गई, उनको तो भागना पड़ गया, तो कयामत हो गई मारने पे। तुनी ने दूसरे एडिशन के मुकदमे में लिखा कि अब मुझे आज मानो कि जब आज 1400 साल बाद मैं अपने ही आलिम की किताब का तर्जुमा कर रहा हूं अली के फजाइल बयान करने के लिए, तो मेरी हालत ये होगी कि मैं अपने बाल बच्चों समेत रूपोश हूं, बाल बच्चों समेत रूपोश हूं, मेरा मदरसा बंद है, मेरी मस्जिद बंद है, सब मुझे छोड़ के भागना पड़ा। तो अब मुझे समझ में आया कि जब आज 1400 साल बाद ये आने वालों को ये हाल है, तो उस वक्त अली से क्या दुश्मनी रही होगी। प्रोपेगेंडा, तबलीगात, इतना प्रोपेगेंडा शाम में कि शाम के लोग हैरत से एक दूसरे से कहते थे, अच्छा अली मस्जिद में क्या करने गए थे जो कत्ल कर दिए गए, क्योंकि वो अपने सिवा तो किसी को नमाजी नहीं मानते थे ना, बस वही नमाजी है, बाकी तो और कोई है ही नहीं ईमान वाला, दीन वाला, दीनदार जो हमें, जो दीन हमारे पास है वो दीन तो किसी के पास है ही नहीं, समझ गए आप। ये थी वो, ये हद थी, इंतहा थी दुश्मन। इसलिए मासूम कौनैन ने किसी को माफ नहीं किया ना, माफ आए थे ना, पैगाम भेजा था ना, माफ नहीं किया। क्यों? तुमने आज बुनियाद रख दी मेरे दरवाजे पे हमला करके, अब लोग मेरे बच्चों के घरों को, खेमों को जलाएंगे, लूटेंगे, कयामत तक मेरी औलाद कत्ल की जाएगी। खुतबा जहरा पढ़ चुका हूं ना, इसमें यही दो बार इसमें मैंने खमसे पढ़े हैं, आपको याद होगा खुतबे पे मैंने, लेकिन याद रखिएगा इसी खुतबे में तो सारे मजालिम आखिर में बयान किए। अगर कुछ भी ना हुआ था तो फिर मुझे जवाब दो, बीबी की कमर खमीदा क्यों हो गई थी? अगर कुछ भी नहीं हुआ था तो फिर 18-19 साल की खातून अपने बाबा के जाने के सिर्फ 75 दिन के बाद ये कहती हुई दुनिया से क्यों चली गई? सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह नहा, सुब्बत अलैया ने सिर ना दया लिया। क्यों कहती भी चली गई दुनिया से 18-19 साल, 20 साल, 21 साल, क्यों ये कहती हुई चली? बाबा आपके बाद मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी, इतनी मुसीबतें कि रोशन दिनों पर पड़ती तो वो सियाह रातों में तब्दील हो जाती। कौन से मसाइब हैं फातिमा के? सुनो अजीजो, आओ तुम्हें ले जाऊं उस मैदान में, मैं क्या करूं? खुदा तो मैं अपनी खुशकिस्मती कहता हूं, अपनी खुश नसीबी कहता हूं कि इस नाचीज, इस छोटे से तालिब इल्म को, इस छोटे से गुनाहगार इंसान को आयतुल्लाह हुसैन मज़ाहिरी के शागिर्द होने का शरफ है। मैंने उसके मसाइब सुने हैं, मैं हर बुध को उनके दरसे अखलाक में जाता था, और जिस तरह से वो डूब कर इश्क हुसैन में मुसीबत पड़ते थे, मसाइब पड़ते थे। खास तौर पे मैं दो लम्हा का नाम लेके आपको बता रहा हूं कि जब शहजादी का जिक्र आता था ना, एक आयतुल्लाह वहीदी खुरासानी और एक आयतुल्लाह हुसैन मज़ाहिरी, मैंने जो तड़प, और ये पहले जिक्र कर चुका हूं खुमैनी का कि वो किस तरह से बीबी का जिक्र करते थे, मासूम कौन है, रहबर किस तरह जिक्र करते हैं, वो अलग, वो सब बयान कर चुका। मैं ये बता रहा हूं जो हौज में जिनके साथ हमने पढ़ा, जिनके दर्श में हम बैठे हैं जाके, कि जब शहजादी का जिक्र करते थे मसाइब नहीं, फजीलत बयान करते हुए इनकी आंखों से अशकों का सैलाब जारी। ऐसी मजलूम हस्ती है मासूमा की, जनाजा तैयार हुआ, आखिरी मजलिस है ना, ये जो रिवायत पढ़ूंगा इसमें भी लोगों को शक हो था, वो शक भी आज दूर कर दूंगा, दलाइल दूंगा, मसाइब में ही आपको बता दूंगा कि क्या हुआ। सुने क्या हुआ? जनाजा तैयार हुआ, अली ने बच्चों को आवाज दी, आओ बच्चों अपनी माँ से रुखसत हो लो। चारों बच्चे हुजरे में दाखिल हुए, हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसुम, हसन भी दौड़े ज़ैनब उम्मे कुलसुम, ये सब दौड़े, जनाजे पर गिर गए, रुखसत करना है ना माँ को। हुसैन नहीं, हुसैन एक कोने में खड़े। मौला ने पूछा, मेरे लाल माँ से रुखसत नहीं होना, मान है हुसैन को अपनी मोहब्बत पे मान है, नाज है। फरमाते बाबा जब तक मेरी माँ मुझे बुलाएगी नहीं मैं जाऊंगा। बस इधर हुसैन के होठों से लबों से जुमले अदा हुए, बनते कफन टूट, माँ ने आगोश फैला दिया, मेरे लाला। लोगों को शक हुआ इस रिवायत पे कि ये करीन कयास नहीं, करीन अक्ल नहीं। तो सुनो, अगर एक रिवायत होती ना मैं ना पढ़ता, कितनी रिवायतों को झुठलाओगे। क्या तुमने पढ़ा नहीं कि जब हुसैन ने मदीना छोड़ा था मां ने मजार छोड़ दिया था? क्या तुमने शबे आशूर के वाकयात में नहीं पढ़ा जब सानिये जहरा ने भाई को बुला कर कहा था, भैया पुश्ते खेमा से किसी बीवी के रोने की आवाज आती है, जब से सूरज गुरूब हुआ है कोई बीवी ऐसे रोती है जैसे उसका जवान जिबा कर दिया गया हो। हुसैन की आंखों से अश्क जारी हुए, फरमाते बहन पहचाना नहीं, अरे कोई और नहीं, हमारी माँ जहरा है। शबे आशूर आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, हुसैन अपने एक एक नासिर को उसका मकाम शहादत दिखाते हुए एक नशेब की तरफ बढ़े, क्या अब अपना मकाम शहादत दिखाऊं। कुछ कदम आगे बढ़े, अचानक वापस पलट कर कहा, वापस चलो, वापस चलो, खेमा गाह की तरफ चलो। जब खेमा गाह के पास पहुंचे, अंसार ने दस्त बस्तार की, मौला आपको अपना मकाम शहादत दिखाने ले गए थे, वहां ऐसा क्या देखा, क्या आपने वापसी का हुक्म दिया? बस मेरा मौला फरमाता है, मेरा मौला फिर आंखों से अश्क जारी, अरे मैं तुम्हें वहां कैसे ले जाता जहां कल मैं ज़िबह किया जाऊंगा, मेरी माँ ज़हरा बैठी है। नहीं यकीन आया, बताओ शाम की राहों में जब सकीना बिछड़ गई थी काफिले से, वो कौन बीवी थी जिसने सकीना को अपनी आगोश में पना दी थी? अब भी यकीन नहीं आया तो आखिरी रिवायत सुन लो, जब हुसैन सैकड़ों तीर खाकर जुलजना से नीचे आया है, जीन से जमीन पर आया, सारी रिवायतों ने यही कहा कि इतने तीर थे जिसमें नाजनी में कि हुसैन का जसद अथर तीरों पर मौलक था। मैं हमेशा ये कहता हूं, नहीं नहीं, अगर तीर न भी होते, हुसैन का जसद अथर जिसमें अथर कभी भी जमीन से नहीं लग सकता था, क्यों नहीं लग सकता था? अरे चश्मे तसव्वुर से देखो, जब हुसैन जुलजना से नीचे आ रहा था, कोई बीबी गोद फैलाए बैठी थी, आ मेरे हुसैन, तुझे आज ही के दिन के लिए चक्कियां भी ظلموا أيام القلبية.